نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں. سورۃ الکہف میں ہم ہر ہفتے اللہ کی توفیق سے یہ آیت پڑھتے ہیں. تھوڑا سا آج ہم اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیں گے کہ کیا ہماری اولادیں اور ہمارے مال واقعی ہمارے لیے باقیات الصالحات میں ڈھل رہے ہیں کہ نہیں, اور پھر اس سارے میں سے جو بات ہم سب اپنے عمل کے لیے یہاں سے لے کر اٹھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اولادیں دی ہیں بیٹوں اور بیٹیوں کی صورت میں, ہم کس طرح سے ان کی تربیت کریں. تربیت سے مراد بہت چھوٹے بچے نہیں مراد, کیونکہ وہ تو سبھی کہتے ہیں. جو ہی تربیت اولاد کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا بچوں کو مینر سکھانا یہ کچھ نہیں. آج ہم بات یہ کریں گے انشاءاللہ تھوڑی سی کہ کیا واقعی ہمیں یقین ہے کہ جو اولادیں ہمارے بعد ہماری جگہ لیں گی یا جن کو بھی ہم نے اپنے بات کے لیے تیار کیا ہے وہ دنیاوی اور اخروی طور پہ کامیاب ہوں گی. میں چند سیکنڈ آپ کو سوچنے کا موقع دیتی ہوں. ہر ایک اب اس وقت صرف توجہ اسی پہ رکھے, اس وقت جس کام کے لیے آئیں نا اس کو کریں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف نعمتیں دی ہیں, اور نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے, نہیں, اس سے بڑی بھی نعمتیں ہیں. ہم میں سے ہر ایک یا تو کسی کا بچہ ہے یا اس کا کوئی بچہ ہے, ایسے ہی ہے نا. یعنی جب ماں باپ ہمارے ہمیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے تو ہم بھی اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں. لیکن ہر جگہ ایک ہی سوال, جہاں جائیں آج بچے تنگ کرتے ہیں. آج کے بچے بڑے شریر ہیں, اور چھوٹے بچے ذرا سے بڑے بچے ہوں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ وقت بہت ضائع کرتے ہیں. اسپیشلی آج کل چونکہ سمر آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سمر میں چھٹیاں بھی جتنی بڑھتی جا رہی ہیں ماں باپ کا صبر بھی کم ہوتا جا رہا ہے. باپوں کو تو خیر پرواہ نہیں, وہ تو کمانے نکل جاتے ہیں صبح اٹھ کے. ان کی تو یہی بڑی خوبی ہے کہ وہ آپ کو کما کر لا کر دیتے اور آپ بچوں کو پھر استعمال کرتی ہیں. لیکن عموماً دیکھا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو اس طرح انجوائے نہیں کر سکتی جس طرح کرنے کا حق ہے. اس کے ساتھ نقصان دو ہے. جیسے اب آپ میں ینگ بچیاں بیٹھی ہیں نا, اب وہ مائیں تو نہیں ہیں نا, لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ پھر ماں باپ اور بچوں کے تعلقات وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. بچے یہ سوچتے ہیں, خاص طور پہ بیٹیاں, ماں میری بات نہیں سمجھتی, امی کو میرے دل کا نہیں پتہ, یا امی کو میرے حالات نہیں پتہ. اس طرح باپ اور بیٹے کا ڈسٹینس بہت بڑھتا جا رہا ہے. کیا یہ بات میں نے جو کہی یہ سچ ہے؟ بچوں کے بارے میں عموماً, اور جوان بچے ہی مراد ہے اس وقت بھی, اکثر پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ان کی اپنی دنیا ہے, یہ کمپیوٹر پہ رہتے ہیں, یہ فون سے کھیلتے رہتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں. اور دیکھا جائے تو جو طریقہ ہمارا زندگی گزارنے کا بن گیا اس وقت اوور آل, اس میں بچوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا. ایون چھوٹا بچہ, اسکول گوئنگ بچہ, جو بھی ابھی زندگی کا آغاز ہوا ہے ابھی, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. صبح اٹھ کے اسکول ہے, 7-8 گھنٹوں کی اسکول, اور اس کی تیاریاں, واپس آنا, کھلانا پلانا, چلو اس کو ٹیوشن پہ لے جائیں, ٹیوشن سے اٹھے تو اس کو مسجد میں لے جائیے مولوی صاحب کے پاس, وہاں سے گھر آئیں گے تو وقت ہی نہیں, روز ہو کے تھوڑا بہت ہوم ورک کرایا, کھانا کھلایا, سلا دیا. عام طور پہ گھروں کی یہی کیفیت ہے, اور چونکہ سارے کر رہے ہیں نا تو ہمیں عجیب نہیں لگتا. حالانکہ ذرا سا کسی دن آپ گھر بیٹھ کر پورا آج کے دور کے اسکولنگ سسٹم کو ذہن میں لائیے, 101 نقص نظر آئیں گے آپ کو. لیکن یہ نون ہے, امریکہ میں, کینیڈا سے لے کر نیچے آتے جائیے, یورپ, پاکستان, ایشیا, ملیشیا, آسٹریلیا, پوری دنیا پہ آج سسٹم یہ ہے کہ بچے صبح اٹھتے اسکولوں میں جاتے ہیں اور پورا ہفتہ وہاں پڑھنے کے نام پہ ان کو بھیجا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ویکینڈ. اور جو ہے یہ ان نیچرل طریقہ تھا, یاد رکھیے, کیونکہ اب یہ 200-300 سال سے چل رہے ہیں ہمارے بھی سامنے. हाँ, मुसलमान भी इसी के ऊपर आ गए हैं। हालांकि हमारे असलाफ, यानी आज मैं आपको कुछ असलाफ से मुराद के ये कि माजी के जो बुज़ुर्ग थे और आइमाए कराम थे, मुहद्दिसीन थे, जिन्होंने वाकई इल्म की खिदमतें की और जिनके नाम आज भी जिंदा हैं। और आप में से अगर जो सिस्टर्स पढ़ने पढ़ाने से मुतल्लिक है, तो मैं जो ही नाम लूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये तो बहुत बड़े इमाम थे। आखिर उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की? कौन सा स्कूल ढूंढा? कहाँ उन्होंने उसके लिए इतने लंबे चौड़े खाते खोले? आप इस जोहराबाद की गलियों से गुजरे, आपको हर दूसरे तीसरे घर के बाहर स्कूल या एकेडमी का बोर्ड नहीं दिखता? कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कैंपस, क्या ये आम नहीं हो गया? हमारे अपने इस मुल्क के रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं चीज़ों को चलाने में लग रहा है ना। अच्छी बात है, इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, पढ़िए अल्लाह के नाम के साथ जिसने पैदा किया। तालीम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्या, अब जो सवाल है ना, ये बहुत गौर से सुनने वाला है, जितनी कोशिशें हैं, जितनी एफर्ट्स हैं, उतने रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं? पहले के माँ बाप टाटों पे बिठा कर अपने बच्चों को पढ़वाते थे। स्कूल क्या थे? टाट, चटाइयाँ, कच्ची पेंसिल। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि उसके अंदर स्लेट, कलम, दवात, तख्ती, रफ कापी, एक हम पढ़ते थे जब तो होती थी, ब्राउन कलर का सफ़ा था। सफ़ेद कापी पे तो लिखने का तसव्वुर नहीं था, वो तो बस नीट वर्क के लिए होती थी। हम खुद करते थे रफ़ वर्क और नीट वर्क, है ना। और माँ साथ क्या देती है? रोटी पे अचार रख के, कोई स्नैक्स और स्लेंटीज और चिप्स और ड्रिंक्स और ऐसी चीज़ों का तसव्वुर था। यानी पहले दौर में एहतमाम कम था या रिसोर्सेज कम थे कह लें। आज वो बढ़ चुके हैं लेकिन नतायज नहीं निकल रहे। आज तन्हाई है। मैं किसी को खौफजदा ना करूँ ना, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ और बाप दोनों ही अपने अपने हिसाब से एफर्ट्स कर रहे हैं ना, उन माँ बाप को अमूमन आखिर में तन्हाई मिलती है। बुढ़ापे में देख लीजिए, जवानी में देख लीजिए, बच्चे साथ नहीं है। छोटे बच्चों को तो शौक़ होता ही है हर जगह जाने का, लेकिन ज़रा से बड़े हों बच्चे तो उनकी मसरूफियत, पढ़ाई, असाइनमेंट है, टेस्ट है। शादियों में अक्सर माँ बाप को मैंने वो अकेले आते जाते देखा है, दावतों में फ़लाँ नहीं आया। यानी एक नई दुनिया बन गई है। ये पिछले 5-10 साल जिससे ये नेट फ़ोन में आ गया ना, उसके बाद एक ऐसी तन्हाई बन गई कि बच्चे साथ जाने को तैयार ही नहीं है। एक माँ ने अपना दुख बताया कि कहीं भी बच्चों को वीकेंड पे लेने जाते हैं, एक बच्ची नहीं जाती। कहती मैं आप सबके साथ बोर होती हूँ, तो घर में क्या करना है, बस ऐसी फिरती रहेगी, बाहर नहीं जाती। कोई बच्चा एक ऐसा होता है वो कहता है नहीं मैंने दावतों में नहीं जाना, यानी फैमिलीज़ के प्रोग्राम्स में नहीं जाना। तो ये जनरल प्रॉब्लम्स है, कमोबेश होंगे हर जगह। आखिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो मिसिंग है। तो चंद चीज़ें देखते हैं कि बच्चों की तरबियत, जो कि एक मुश्किल और थकाने वाला काम है, और अक्सर माँ बाप इसका शिकवा ही करते हैं कि हमारे बच्चे वैसे नहीं बन रहे या हमें उससे वो नतायज नहीं निकल रहे जो हम चाहते हैं। तो आइए इस पे चंद आइमाए कराम की राय लेते हैं। उन्होंने कुछ असूल मुरतब किए, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरे सामने है, इब्ने कय्यम अल जौज़ी रहमहुल्ला, नाम सुना होगा, किस किस ने इनका नाम सुना हुआ है। अपने पाए की शख्सियत है, यानी ये वो लोग हैं कि जो इल्म के बाब हैं। कोई मसलक, कोई जमात, कोई गिरोह फिरका इनका नहीं था। लेकिन ये ऊपर से शुरू करें ना, तो नबी सल्लम का दौर, फिर सहाबा का, ताबईन, तबा ताबईन, फिर जिस दौर में इल्म, हदीस और बुनियादी जो बेसिक इल्म थे ना, उस दौर की शख्सियत है। मैं आपको इनका एक कॉल पढ़ के सुनाती हूँ। कहते हैं कि बेशक गुनाहों में से कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनका कफ़ारा इंसान को औलाद की तरफ से मिलने वाले गम के सिवा कुछ नहीं होता। ज़रा सोचिए, पहले तो यहाँ हर एक वो माँ और बाप और ख़ुद बंदा ख़ुद भी सोचे कि अगर मुझे अपनी औलाद का कोई गम मिला है, सोचिए किसी भी किस्म का गम हो सकता है ना, तो उसकी वजह फिर मेरे गुनाह हैं। बहुत कम बाप ये सोचते हैं कि मेरी बेटी घर क्यों भेज दी गई या मेरी बेटी का घर क्यों नहीं बसा। असल में उसके पीछे वो 20-25 साल का जुल्म और बर्बरियत होती है जो वो अपनी बीवी पे कर चुका होता है। ये जुमला इस तरह समझ आएगा आपको। आप कहेंगे अच्छा फिर बेटी का क्या कसूर है? नहीं, अल्लाह ने बेटी को भी सिखाना है। बेटे का घर नहीं बसा, चलिए अच्छा बेटा, मर्द सब शादी चाहों से अरमानों से की, उसका घर ही नहीं बसा। अब आप सोच में पड़ गए, ये क्या हुआ? ज़रूर कहीं ना कदरी होगी उसकी फैमिली में से किसी की अपने शौहर की, तो उनके बेटे की नाकदरी कर दी गई। बात समझ गए? यानी ये बात इतनी बड़ी हकीकत है, और सूरत कहफ में इसमें आयतों में बहुत वकान अबू हुमा सालेहन इस पर बड़ी डिटेल से बात होती है, आपको कई जगह से मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त सिर्फ ये याद रखे, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका कफ़ारा औलाद के गमों की तरफ से ही पूरा होगा, वरना फिर हमें आखरत में जाके भुगतना पड़ेगा। अब आज तो चीखें निकल गई ना जब बेटी का गम मिला, और बहुत कम बापों को और माओं को तौफीक होती है कि उस वक्त वो कहे अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ ये मेरा ही गम है, मैंने भी किसी की बेटी की सारी ज़िंदगी ना कदरी की, आज मेरी की भी हो गई, मैंने ही सारी ज़िंदगी अपने ससुराल की कदर ना की, या मैं अपने ससुराल में बहुत ऐसा मशहूर रहा तो आज मेरे साथ हुआ। यानी बहुत कम लोगों को ये ग्लासेस मिलते हैं कि वो ग्लासेस लगा लें और अपनी खराबियाँ अपनी कमियाँ ढूंढने जब उनके बच्चों को कोई गम मिले। अमूमन हम दूसरों को बुरा कहते हैं, फ़लाँ बुरा, रिश्ता अच्छा नहीं, वो फ़लाँ बुरे थे, धोखा हो गया, ये कर दिया वो कर दिया। उस वक़्त दामन में झांकने की ज़रूरत होती है कि अल्लाह ने यहाँ डालकर मुझे किस गुनाह से पाक किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि तो खुशखबरी है उसके लिए जो अपने बेटों की तरबियत का एहतमाम इस तरीके पर करता है जो अल्लाह सुबहान तआला की पसंद और रज़ा का है। यानी अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि जिससे वो बच्चे इस काबिल हो जाए कि वो अल्लाह की पसंद के बंदे बन जाए। फिर इसी तरह से आगे वो लिखते हैं, और खुशखबरी है उसके लिए जिसके लिए औलाद की तरबियत में तकलीफ़ उठाना इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यानी बच्चों की तरबियत के दौरान जो मुश्किलात आती हैं, घबराया ना करें। हर वक्त हाल दोहाल, गिले शिकवे, परेशान होना ये मोमिन का शौर नहीं है। मोमिन ठंडा होता है, अंदर उसके जितनी मर्जी जवार भाटे उठ रहे हों, बाहर उसके सुकून होता है। लोग देखकर उसको हर वक्त ये नहीं कहते कि हाय बेचारी हाय बेचारी। फिर ये कहते हैं कि लिहाजा अगर तुम अपने बेटों में कोई ऐसी बात देखो जो तुम्हें इनकी तरबियत के मामले में थका देती हो, कुछ बच्चे होते हैं ना ज़िद्दी, जैसे माएँ कहती हैं इसको नहीं मैं समझा सकी, ये नहीं मेरी सुनता। चार बच्चे हैं, डांट सुनकर बैठ गए, एक बच्चा वो उसमें भी उछल कूद कर रहा है, कभी होता है ना। कहते हैं कभी अगर तुम अपने किसी एक बच्चे को ही सही देखो कि तुम तो उसकी तरबियत कर रहे हो और करना चाह रहे हो, लेकिन वो सही हो कि नहीं देता, तो क्या करो? हम कहते हैं अच्छा फिर किसी पेरेंटिंग स्कूल से रابطہ करें, साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, अक्सर यही सोचते हैं ना, कोई मशवरा लें। नहीं, इमाम इब्ने कायम रहमहुल्लाह का मशवरा आपको मुझे क्या है, अगर आप अपने किसी बच्चे को स्टबन देखें, ढीठ देखें, बड़ा है तो कहते मैंने उधर ही शादी करनी है, कोई बेटी है तो वो कहती है नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकती, आपने मेरा जहाँ रिश्ता किया वो तो मुझे मंजूर ही नहीं, मिसाल है छोटे बड़े मामले देखे, कहते हैं अगर ऐसा मामला है कि तुम थक रहे हो और वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तो जाकर अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। कहाँ से इलाज मिला? फ्री, कहीं नहीं जाना पड़ेगा कि अल्लाह मुझे मेरा वो गुनाह दिखा कि जिसकी वजह से मेरी ये बेटी या मेरा ये बेटा मेरी बात नहीं मान रहा। एनालिसिस भी कीजिए, हो सकता है कि आपके बेटे या आपकी बेटी का पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, आप उसके साथ कोई गलत बात मान रहे हो, तो याद रखिए कि ये कोई आसान बात नहीं है। तो पहला असूल फिर क्या मिला हमें तरबियत औलाद में से, या बच्चों के बिगाड़ को दुरुस्तगी में लाने का, यानी असल में इसका जो मौजू होना चाहिए ना आज की टॉक का, वो क्या है कि बच्चों के बिगाड़ से निपटने के लिए रहनुमा असूल। तो फिर पहली वजह आज आपको समझ आ गई है, जब कोई कुछ भी आपकी बात ना माने या आपको समझ ना आए कुछ ना हो, तो जाकर जायनमाज़ पे बैठ जाए। आप में बहुत सारी माएँ छोटे छोटे बच्चों वाली होंगी, कुछ के बच्चे जवान भी होंगे, और कुछ अनमेरिड बच्चियाँ, वो सबसे खुशकिस्मत हैं, उन्होंने पहले ही ये बात सीख ली। हम हर काम सिखाते हैं अनमेरिड बच्चियों को, और शादी से पहले जो उनको फूल बूटे बनाने, कढ़ाई सिलाई कपड़े, ये भी कभी होता था, अब तो ये भी नहीं रहा, अब कौन कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ करता है, अब तो बस बाज़ार से हर चीज़ मिलती है। लेकिन औरत औरत ही है ना, घर तो बनाना है ना, तो जहाँ आपकी बच्चियों की शादी हो रही है या अगर आप में से किसी की शादी हो रही है, तो ये तरबियत लेना भी ज़रूरी होता है। कुन छुरी किसी के हाथ में पकड़ा दें और उसको चलानी ना आती हो तो अपने ही हाथ से भी कर लेगा। तो जब भी आपको भी कहूँगी प्रैक्टिकल चीज़ पर आ जाइए, आप इस घर में आ जाएँ वापस, बच्चा बात नहीं मान रहा क्या करूँ, एक दफ़ा प्यार से कहिए, दूसरी बार कहिए, आपको लग रहा है कि ये अब जिद पे आ गया, छोटा बच्चा इवन जिद पे आता है, रोना शुरू, बगैर वजह के रोना शुरू होते हैं। आप वो बच्चा पकड़ाएं किसी को, छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, अब रो रहा है, पकड़ाएं थोड़ी देर किसी को, जाए नमाज पर खड़ी हो जाए कि अल्लाह ये बच्ची क्यों चिढ़ गई है, अल्लाह ये बच्ची क्यों रो रही है, अल्लाह ये दूध क्यों नहीं पी, जाके जाए नमाज। जाए नमाज मैंने एक मिसाल दी आपको, क्योंकि इससे आपकी जहनी तवज्जो अल्लाह की तरफ ज़्यादा हो जाएगी ना। और उस वक्त अगर और कोई भी नहीं है संभालने वाला, आप कहते हैं ही कोई नहीं, उस बच्ची को गोद में लेकर ही अल्लाह से बातें शुरू कर दें, अपने गुनाहों पर झांकें। ये पहला असूल है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। आप देखिए लोग लाखों बार पढ़ते हैं, बल्कि पढ़वाते हैं खाने खिला खिला के लोगों से। आप अपने अंदर इसको पैदा तो करके देखें, ये जो तकलीफ़ गम मुझे आया ये असल में मेरे ही गुनाह की सज़ा थी, तो अल्लाह ताला उसको दूर कर दे। ठीक है, ये है पहला असूल। वाज़े कोई सवाल कोई बात इस पे तो पूछ सकते हैं, क्लियर है जी? आप जी देखिए अपने गुनाह जो है ना वो ज़्यादा भारी हैं। बस इनका सवाल क्या है कि ये कुछ जलाली कलमा है, कुछ जलाली नहीं है, क्या ये गर्म कलमा है, क्या करें? सीधी सी बात है, ये एक दुआ है, एक नबी की दुआ है। मछली के पेट से अल्लाह ने उसको निकाल दिया, आपको मुझे क्यों ना दुखों से निकाले। उसी में अल्लाह ने कह दिया वह कज़ालिका नुनजिल मोमिनीन। सिर्फ यूनुस इस कलमे को पढ़ने से ही बाहर नीन भेज दिए गए थे। आज भी मोमिन, शर्त मोमिन है, ईमान के साथ कोई बुनियादी रुकावट ना हो, हम पाँचों की नमाज कोई नहीं पढ़ते, आयत करीमे का विर्द कराते हैं, नहीं चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम खा अपने अपना वक्त और दूसरों का वक्त ज़ाया किया। आप पहले इस्लाम के बुनियादी कामों पे कारबंद हों, पांच वक्त की नमाज, कम अज़ कम देखिए ना अकीदा तो सही हो ना बंदे का, मेरा अल्लाह कौन है, नबी सल्लम कौन थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नौ शर्तें हैं इसकी, एक एक को गो थ्रू कीजिए। जब आपका कलमा पक्का हो गया अब नमाज पे गौर कीजिए, मेरी नमाज ठीक है, नमाज का तरीका, नमाज के अंदर क्या हालत, अल्हम्दुलिल्लाह। करते करते पांच बुनियादी चीज़ें देख लीजिए, रोज़े को देखें, हज को देखें, मामलात को देखें, अखलाक को देखें, अपनी सी हैसियत से आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता, एक बार पढ़ें या सौ बार पढ़ें, याद रखिए एक बराबर है। वो पढ़ना जिसके अंदर गुनाहों की शर्मिंदगी हो, जो लफ्ज़ कह रहे हैं ना ला इलाहा इल्ला अंता, है ही कोई नहीं तेरे सिवा, उस वक्त कही अपने दुख को सोचकर, कोई है ही नहीं तेरे सिवा मेरे इस दुख को दूर करने वाला, कोई है ही नहीं तेरे सिवा मेरे दर्द को दूर करने वाला। सुबहाना का पाक है तू, किस चीज़ से पाक है? हर उस बात से पाक है जो लोग तेरे बारे में कहते हैं। अल्लाह से बातें करे, एक दफ़ा पढ़े और अल्लाह को बातें करते हुए ये कहे और इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अपनी तरफ हाथ करे, बेशक मैं ही ज़ालिम हूँ, ये जो मेरे पे मुसीबत आई ये मैं ही ज़ालिम हूँ, ये जो मेरे मियाँ की जॉब चली गई, ये मर्द भी तो पढ़ते ही होंगे ना। हर बंदा जब कोई तकलीफ़ आए उस पर ये कहे कि ये मेरा कोई गुनाह, तो मुझे बताइए इसके बाद पीछे रह क्या गया। एक दफ़ा पढ़े, इस पर लंबी लंबी बातें, इस पर पूरे पूरे लेक्चर्स हुए हुए हैं, क्लासेस में इस पर हम डिटेल से बात करते हैं, तो लिहाजा अपने गुनाहों की माफ़ी। ठीक है, चलिए दूसरे असूल पे चलते हैं। पहले एक वाक़या सुना देती हूँ। तारीख में यानी एक शख्सियत गुजरे, मकातिल बिन सुलेमान रहमहुल्ला। जब मंसूर अब्बासी खलीफा के पास आए, जिस दिन इनकी खिलाफत पर बैत की गई, तो मंसूर ने इनसे कहा है मकातिल मुझे कुछ नसीहत कीजिए। यानी मकातिल आलिम है और जो मंसूर अब्बासी है वो खलीफा बन रहे हैं। उस दौर का खूबसूरत तरीका देखिए कि जब कोई हुकूमत के तख्ते पे बैठता था ना, तो दीनदारों को बुला के कहता था आओ मुझे नसीहत करो कि मैं कोई गलत काम ना करूँ। ये भी कितनी अच्छी बात है, हमारे तो पटाखे फोड़ कर और खुशियाँ मनाते हैं ना लोग के, अच्छा जी अब जीत गए हैं, तब देखते हैं होता क्या। खैर इनको इन्होंने बुलाया, कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी में डाल दिया है, तो आप मुझे नसीहत कीजिए। तो मकातिल कहने लगे क्या मैं तुम्हें इसमें से नसीहत करूं जो मैंने देखा या इसमें से जो मैंने सुना, यानी अपनी देखी हुई बात बताऊं या सुनी हुई। तो मंसूर ने कहा नहीं, आप मुझे वो बताएं जो आपने देखा है, क्योंकि देखी हुई बात ज़्यादा असर करती है ना, हमें तो देखी हुई बात चाहिए। तो मकातिल कहने लगे कि सुनो ए अमीरुल मोमिनीन, ये लक़ब होता था किसका, खलीफा का, जैसे सदर वज़ीर आज़म, यानी आज कोई वज़ीर आज़म इलेक्ट हो और ये पूछे किसी दीनदार से कि मुझे नसीहत कीजिए, तो क्या वो आलिम कहेंगे, सुनिएगा। कहने लगे कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उससे पहले के दौर के खलीफा गुजर चुके थे, इनको लोग उमर सानी भी कहते हैं, इनके इंसाफ़ की वजह से, और कहते हैं यहाँ से फिर रिवाइवल हुई थी मुसलमानों की। سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ تھوڑا سا ڈکلائن تھا خلفائے راشدین کے بعد، وہ پھر عمر بن عبدالعزیز کے ذریعے اللہ نے آگے کیا، رویا کرتے تھے، اور ان کا آگے جا کے حضرت عمر کی کسی پوتی کی نسل سے تھے یا کیا تھا، حضرت عمر اپنے دور میں راتوں کو گشت کیا کرتے تھے کہ دیکھیں کہ اس گلی کے لوگ مطمئن ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، جیسے یہاں گلیاں ہیں نا تو گلیوں سے گزرتے تھے. تو ایک دن کسی گلی سے گزرے تو وہاں سے اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا دو، زیادہ پیسوں کا دودھ بک جائے گا. تو بیٹی نے کہا کہ امی آپ کو نہیں پتہ کہ عمر فاروق نے اس بات سے منع کیا، خلیفہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی یہ خیانت نہ کرے. تو وہ ماں کہنے لگی کہ امیر المومنین کو کیسے پتہ، وہ کون سا ہمارے پاس ہیں. تو بیٹی نے کہا کہ عمر تو نہیں ہے، حالانکہ عمر بیٹھ سن رہے تھے، عمر کا رب تو جانتا ہے نا. اگلے دن حضرت عمر نے ان ماں بیٹی کو بلایا، کہتے ہیں کہ بیوہ عورت تھی غریب گھر کی. حضرت عمر نے کیا کیا، اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا. یہ ہے بچوں کی تربیت کا ایک نسخہ، سائیڈ میں سے نقطہ نکلا کہ بیٹی کے تقوی کی وجہ سے کہ یہ بچی جو رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈر رہی ہے اور جس کو اللہ کا خوف ہے خلیفہ کے خوف سے زیادہ، یہ کتنی پیاری ماں بنے گی. اور اس غریب عورت کو اور کیا چاہیے تھا، خلیفہ وقت کے بیٹے کی بیوی بنتی، رشتہ ہوا، اس بچی کی نسل میں سے یہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے کچھ جنریشنز کے بعد. تو یہ ان کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے، 11، اور وہ صرف 18 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے. ایک درہم ہوتا تھا ایک دینار، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، دینار جو ہے سونے کا سکہ ہے. آج صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتی ہوں کہ آدھا تولہ سونا چھوڑ کر گئے، وہ ایک سونے کی ڈلی ہوتی تھی. صرف 18 چھوڑے اور بیٹے کتنے، 11. 5 دینار کا کفن دفن ہوا. آپ دیکھیے کہ جب 5 دینار کفن پہ لگے تو کتنی کو بڑی اماؤنٹ ہوگی. اور 4 دینار سے ان کے لیے قبر خریدی گئی اور باقی 11 دینار ایک ایک کر کے ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے. اپنے وقت کا بادشاہ فوت ہو رہا ہے اور اپنی اولاد کے لیے ایک درہم چھوڑ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کفن ہی 5 دینار کا آیا ہے، تو وہ ایک دینار سے کیا آیا ہوگا، اس کی کیا ویلیو ہوگی اس دور میں. ذرا سا سوچیں ہم کیا سوچتے ہیں، بچوں کے لیے چھوڑ جائیں. اور ہمارے تو ملک کے مردوں کا یہ روگ ہے، آج رلاتے ہیں بچوں کو، بیوی سے غصہ کرتے ہیں پیسوں پہ، 100 روپیہ کوئی مانگ لے تو چیخنے لگتے ہیں، اور انہی بیوی بچوں کے لیے کروڑوں کی جائیدادیں بنا رہے ہوتے ہیں دن رات کہ ہمارے بعد ان کو کام آئیں گی. اپنی زندگی میں دیجئے، دعائیں لیجئے. دنیا میں ہو سکتا ہے بیویاں رو رو کے زندگی گزار دیں، کیا وہ بیوی چاہے گی کہ میرا شوہر مرے تو پھر ہی مجھے 8واں حصہ ملے اس کے پیسوں کا، اور بچے نہیں ہیں تو 4تھا مل جائے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی خوش ہو آپ کے مرنے پہ، بات سمجھ رہے ہیں نا. تو بعض مرد زندگی میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ چھوڑنا ہے. اس کے برعکس ایک اور حکمران تھے، ہشام بن عبد الملک، کہتے ہیں کہ ان کے بھی 11 بیٹے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو اس نے ترکے میں یعنی ورثے میں ہر لڑکے کے حصے میں 10 لاکھ دینار چھوڑے. بات سوچیں 10 لاکھ روپے چھوڑے، مثال ہے، یا اس کو کوئی بھی کرنسی کر دیں، کہا اللہ کی قسم اے امیر المومنین میں نے تو ایک ہی دن عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا، اور ہشام کے بیٹے کو دیکھا وہ بازاروں میں بھیک مانگ رہا تھا. بات سمجھا کی، جس باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک ایک دینار چھوڑا، اللہ نے بعد میں ان کے بیٹوں کو اتنا دیا کہ وہ 100 100 گھوڑے صدقہ کر دیتے تھے، اور جو باپ لاکھوں دینار چھوڑ کر گیا اس کے بچے کچھ ہی عرصے کے بعد بھیک مانگنے لگے. تو دوسرا اصول بنائیے کہ اپنے بعد کے لیے، یہ آپ ماؤں کے لیے بھی ہے، بیٹوں کو تو پیچھے کر دیجئے، مردوں کا تو ایک ہے ایشو. بیٹیوں کے جہیز بنانے کی کتنی فکر ہوتی ہے ماؤں کو، اب تو وہ مجھے نہیں پتہ، یہاں تو بھی کچھ ہوگا کیونکہ اب یہ ایک چھوٹی بستی ہے نا، یا پاکستان، اور پاکستان کا بھی کہہ لیجئے کہ ایک نواحی حصہ ہے، یہاں ابھی بھی فکر ہوگا بیٹی کے جہیز کی، بیٹی لے لوں، بناتے ہیں بیٹیاں، بسترے لے لوں، کپڑے لے لوں. ادھر ابھی ہے، باہر کی دنیا میں یہ رنگ بدل چکے ہیں، وہاں کچھ اور ہے، وہاں گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے کام ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے जेवर एक आप 20 साल संभालती हैं कि बेटी को शादी पे पहनाना है, 20 साल बाद शादी होगी तो ये जेवर उसको पहना दूंगी। अच्छा, फिर बाद में लोग इतने उल्टे सीधे सवाल करते हैं, वो तो बेटी की नियत से रखा है तो अब ज़कात देती रहूँ उस पर, वो तो ज़कात में ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास टोटल 10 तोले सोना है, आपका है ना वो, तो आपको ज़कात देनी है उसमें। सभी को पता है 7.5 तोले से ऊपर पे ज़कात देते हैं। फिर कहती हैं माएँ, वो तो मैंने अपनी 4 बेटियों के लिए रखा हुआ है, एक उसको दे दूंगी, 2.5 2.5 तोले एक एक को दे दूंगी। तो क्या फिर आप, मैं ऐसे ना करूं कि वो तो 2.5 तोले पहली का है, दूसरी का, तीसरी का है, तो फिर मैं ये कह दूं कि मेरे ऊपर तो ज़कात ही नहीं है। सवाल समझ रहे? क्योंकि 2.5 तोले पे ज़कात नहीं होती, 7.5 पे होती है। अच्छा जी, ऐसे तो आप नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी चीज़ें भी दिया तो नहीं ना आपने, नियत तो हम करते हैं, ये तो हम पहले ही कहते हैं जी, ये सब कुछ अब बच्चों का ही है। कितना पेट जुमला, यानी यहाँ एक नोट कीजिएगा जुमला, हमारे कल्चर में अमूमन लोग एक जुमला कहते हैं, ये हमारे बाद किसका है ना? क्या हम सब के जहनों में यही नहीं आता कि जब हम मरेंगे, मिसाल है ये घर मेरा है अगर, तो मेरा ये घर बाद में मेरे बच्चों का ही है ना, और मैंने अगर कोई चूड़ी पहनी है, जेवर है, तो क्या मुझे यही नहीं ख्याल होता कि ये मेरे बाद बच्चों का है? कहाँ है वो माएँ, कहाँ है वो बाप, कहाँ है वो ईमान वाले जो कहें कि हमारे बाद क्या हमारी ज़िंदगी में भी अल्लाह का है? हमें बच्चों का ख्याल आ जाता है, दीन का नहीं आता। वही सोने का सेट बेचें और उसके पैसे किसी जगह रख लें और थोड़े थोड़े करके वो अपनी बच्ची की तरबियत पे लगा देना, तो ना तो ज़कात देनी पड़ेगी, और जब उसके नसीब में होने ना मिल जाना है। कई दफ़ा आपने रखा होता है, 10 साल आप संभालते हैं, 11वें साल चोर आता है, सारा कुछ ले जाता है, फिर आप रोते हैं। एक तरफ आपको ज़कात का काम, दूसरी तरफ उसकी संभाल का काम, और चौथी तरफ आप खुद पहनते भी कोई नहीं और बच्चियों की तरबियत पे नहीं लगा। 100 रुपये की किताब बाज़ दफ़ा लोग नहीं लेते, और जाकर हम 500 रुपये का हो सकता है कि कोई जूता ले आए, है ना? तो बच्चों की तरबियत पे लगाइए पैसा, ना कि उनके लिए संभालिए। ज़मीन के टुकड़े बेच बेच के भी अगर आपको मुझे बच्चों के दीन और दुनिया को संवारने में लगाने पड़े तो लगाएं, दुनिया में तो लगाते हैं, वहाँ तो छोड़ ही नहीं सकते। आप में से जिसके बच्चे स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं इस वक्त, या आप खुद, जैसे आपने अभी कहा आप क्या है, लॉ किया ना, पैसे लगे होंगे ना यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज, अब ये लॉ कर चुकी हैं तो लाखों में खर्चा आया होगा टोटल आपने जितना करा। अब इसी बच्ची की माँ को मैं कहूँ कि आप इसको ज़रा 1 साल के लिए किसी कोर्स में डाल दें कि इनको हम कुरान सिखा दें, जैसे शुरू में मिसाल हो रही थी ना, तो सबसे पहला सवाल अमूमन जहनों में क्या आता है, फीस है, किताबें भी लेनी पड़ेंगी, रिक्शा भी लगवाना पड़ेगा। तो ये सवाल आपने जाके कनेड कॉलेज वालों से क्यों नहीं किया, और आपने पंजाब यूनिवर्सिटी वालों से क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों की दुनियावी तालीम पे दिल खोल के लगाते हैं और खुश होते हैं, है तो लगा रहे हैं ना, तो दीन पे नहीं लगाते। तो दूसरा असूल फिर इधर से क्या मिला कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत पे लगाएं कि अगर 1 दिरहम भी छोड़ जाएं तो वो बच्चे अल्लाह के हुक्म से इतने नेक और समझदार हों कि अपनी मेहनत से कमाएं और सदका करें। जिस रब ने आपको जो दिया, तो क्या वो आपके बच्चों को नहीं दे सकता? क्या आपने अल्लाह को गरीब समझा? तो अपने बच्चों की ये फिक्र छोड़ दें कि हम इनके लिए छोड़ के क्या जा रहे हैं।